विश्व दर्पण। प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज हम सीरिया व इराक से दाइश के खात्मे और तेहरान में तकफीरियत विरोधी सम्मेलन की चर्चा करेंगे। इराक व सीरिया से आतंकी गुट दाइश के अंतिम ठिकाने की तबाही के साथ ही इस गुट के अंत का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। इन दोनों ही देशों में दाइश के विरुद्ध कार्रवाइयों में निर्णायक भूमिका निभाने वाले ईरान की आईआरजीसी फोर्स की अलकुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी ने 21 नवंबर को इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई को एक पत्र लिखकर घोषणा की कि अब इराक व शाम में कहीं भी दाइश के नियंत्रण में कोई क्षेत्र नहीं है और इस आतंकी गुट को पराजित करके इसका अंत कर दिया गया है। इससे पहले वे 21 सितंबर को वादा कर चुके थे कि 3 महीने के अंदर दाइश का अंत कर दिया जाएगा।
برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت ما باید به وعده خودمون صادق باشیم اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود।
इस पत्र के जवाब में वरिष्ठ नेता ने ईश्वर का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उसने अपने पवित्र बंदों के हाथों साम्राज्यवादियों द्वारा बोए गए इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। दाइश और तकफीरियत से निपटने के लिए दीर्घ अवधि वैचारिक संघर्ष की जरूरत है ताकि इस्लामी शिक्षाओं को सही रूप में संसार के सामने पेश किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में तेहरान में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परिजनों के प्रेमियों और तकफीरियत की समस्या की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न इस्लामी देशों के 750 से अधिक धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। अमरीका व उसका पिट्ठू मीडिया लगातार ये प्रचार कर रहा था कि सीरिया व इराक से दाइश के अंत को कम से कम 20 साल का समय लगेगा, लेकिन प्रतिरोध के मोर्चे ने 2 महीने में दाइश का सफाया कर दिया। इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए भारत के प्रख्यात टीकाकार सौरभ कुमार शाही कहते हैं,
ये जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न एनालिस्ट्स हैं, ये सब एक निगेटिव अप्रोच उन्होंने बना रखा था और जिसके तहत ये कहते थे कि दाइश का सफाया यहाँ से नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद मैंने करीब 3 दफ़े सीरिया का दौरा किया, 2 दफ़े मैंने इराक का दौरा किया। जब भी अपने रिपोर्टाज के दरमियान जो चीज़ मैंने देखी, मुझे इस बात में कोई शक नहीं था कि कुछ महीनों में या कुछ सालों में ये सारे इलाके जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी जो सूरत हाल है, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो सीरिया में कोई भी एक टाउन, यानी शहर छोड़ दें, शहर तो फिर भी एक बड़ी चीज़ हो गई, कोई भी एक छोटा से छोटा टाउन भी अब दाइश के कंट्रोल में नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, चूंकि कोई भी टाउन इनके कब्जे में नहीं है, तो ये फतह जो है वहां पे हो गई है।
पाकिस्तान के प्रख्यात टीकाकार असद अब्बास कहते हैं कि अगर दाइश को पराजित न किया जाता तो वो एक क्षेत्र के कई देशों पर कब्जा कर लेता और इसके लिए सभी को प्रतिरोध के मोर्चे का आभारी होना चाहिए।
खुदावंदे करीम की ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि उसने आलम इस्लाम को एक बहुत अजीम फितने से, जो कि यानी मुल्कों को अपनी लपेट में ले सकता था, 2 ममालिक के अंदर उसने अपने जो पंजे गाड़े थे वो यकीनन उन 2 ममालिक तक उसने नहीं रहना था, उसने मजीद फैलना था और कई ममालिक जो हैं इस फितने के तहत आ जाने थे। और खुदा बंदे करीम की ये यानी ख़ास तौफीक है आलम इस्लाम के ऊपर, मुस्लिम दुनिया के ऊपर, कि उसने बरवक्त ऐसी क़्यादत, ऐसे लोग हमें मुहैया किए जिन्होंने बरवक्त इकदाम किया और इस फितने को जो है इसकी जड़ से वहीं पे इसकी बेखूनी की है। मैं समझता हूँ कि ये खुदावंद करीम की ख़ास मेहरबानी है और इसमें हमारी जो मकावती ब्लॉक की क्यादत है वो इसमें वाकई लायक तहसीन है और तबरीक की हकदार है।
दाइश और अन्य तकफीरी आतंकी गुटों के पीछे क्या सऊदी विचार व दृष्टिकोण काम कर रहे थे या उनके पीछे अमेरिका व पश्चिम की भी कोई भूमिका थी? सौरभ कुमार शाही का जवाब।
ये कहना कि ये लोग इस्लाम से प्रेरित होके اسلام سے یعنی کسی طرح کا لنک رکھ کے یہ کچھ کرنے آئے تھے, تو یہ بڑا ہاسیاسپد بات ہوگی کہ شروعاتی کے دنوں میں یہ بڑی پروپیگنڈا پھیلائی گئی سیریا میں بھی اور عراق میں بھی کہ دیکھیں جی سنیوں کے اگینسٹ میں ہو رہا ہے, جی سنیوں کے اگینسٹ میں ہو رہا ہے, سنیوں کے اگینسٹ یہ وہ تمام اس طرح کی چیزیں پھیلائی گئی. اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا کیونکہ ان کے ہی جو جنرل تھے, آپ کو پتا ہوگا جو 4-star جنرل وہاں پہ تھے, جنرل پیٹریس, انہوں نے یہ جو ایک سنی وکٹم ہڈ کی پوری ایک کہانی نیریٹو جو بنائی اس کو پورے ویسٹ میں, پوری ایسٹ میں ہر جگہ پھیلایا گیا. اب آپ دیکھیں جب داعش نے موصل پہ حملہ کیا, موصل کن کا گڑھ ہے, نقشبندی صوفی جو تحریک ہے ان کا گڑھ ہے موصل, انہوں نے ان کو آنے دیا, اپنے شہر پہ قبضہ کرنے دیا. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بڑے بہت بڑے لبریٹر ہیں, یعنی یہ انہیں شیعوں کے چنگل سے آزاد کروائیں گے. جب یہ شہر میں گھسے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ہی جو بزرگ تھے ان کے روزے انہوں نے اڑا دیے بم سے. یہ جو پورا پروپیگنڈا تھا, اور میں اس میں مانتا ہوں کہ صرف ایکٹیوسٹ نہیں, اس میں کامن لوگ بھی اس پروپیگنڈے کے چکر میں پڑ گئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. مجھے لگتا ہے کہ ان سے دھیان سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, دھیان سے چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا.
ایران اور حزب اللہ نے سیریا و عراق سے داعش کا صفایا کر دیا, لیکن سعودی عرب انہیں نرنتر آتنکی بتایا جا رہا ہے. اس کی وجہ بتاتے ہوئے اسد عباس کہتے ہیں,
ایران اور حزب اللہ کون سی دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو اصل میں بنیادی طور پر جو جس طرح سے جنرل قاسم سلیمانی نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شکست ہے, یہ واقعاً بہت بڑی شکست ہے. اس کے بارے میں قطر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں, حمد نام ہے ان کا شاید, انہوں نے دو انٹرویوز دیے ہیں, ایک کینیڈین ٹی وی کو دیا تھا اور ایک امریکن ٹی وی کو دیا تھا, جس میں انہوں نے یہ پورا کا پورا جو پلان تھا شام کے اندر اور عراق کے اندر, اس کو انہوں نے ایلیبریٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے, اس کا باقاعدہ ایک نام تھا اس پورے پلان کا, ہنٹ فار پرے, یعنی جو سیریا کے صدر تھے ان کو ہنٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ پورا پلان بنایا گیا تھا. اور وہ انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ اردن اور ترکی دو ممالک ایسے ہیں جہاں سے یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا. خود انہوں نے بتایا کہ میں شاہ عبداللہ کے پاس گیا تھا, شاہ عبداللہ نے مجھے بلایا تھا اور انہوں نے مجھے یہ فائل پکڑائی کہ یہ فائل جو ہے یہ سیریا کی فائل, اس کو آپ نے لے کر چلنا ہے اور یہاں پر تمام کا تمام سلسلہ جو ہے وہ آپ کے زیر انتظام رہے گا. وہ کہتے ہیں میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں, قطری حکومت جو ہے اس کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا یعنی کوئی کسی ثبوت کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ لہذا ایران جو ہے اس سے بیسیکلی یعنی مجھے جو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ ایران سے جو بیسک مسئلہ ہے نا وہ یہی مسئلہ ہے کہ یہ یعنی یہ جو یہ جس بلاک کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے یا جس آئیڈیالوجی کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ بیسیکلی استبداد, استعمار اور اسلامی دنیا کے اندر جو اس قسم کے مختلف یعنی جو ان کے پپٹس ہیں یہاں پر, اس کو یہ آئیڈیالوجی قبول نہیں کرتی ہے.
سورب کمار شاہی کہتے ہیں کہ سیریا و عراق میں جو کچھ ہوا وہ عرب دیشوں میں آنے والی کرانتیوں اور آندولنوں کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا.
جب عرب اسپرنگ آیا تو اس میں بڑا یہ کلیئر تھا کہ ان سب چیزوں کے خلاف وہ ایک اسپرنگ تھا, لیکن جو کاؤنٹر ریولیوشن ہوا اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کو واپس سے اسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ جو بھی گورنمنٹ پاور میں ہوگی وہ امریکن ایکسپینسنزم کو سپورٹ کرے گی اور نارملائزیشن کا جو ایک گھنونا پروسیس شروع ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اس کو بھی یہ بنائے گی. اب اگر آپ عراق اور سیریا کو دیکھیں تو عراق میں 2003 کے بعد اور سیریا میں حافظ الاسد کے آنے کے بعد وہ ایسی گورنمنٹ ہے جس نے ان دونوں چیز کی مخالفت کی, یعنی وہ سامراجواد کی بھی مخالفت تھی اور وہ اس کا بھی انہوں نے مخالفت کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا نارملائزیشن پروسیس شروع کیا جائے. تو ایک جو اوور آل ان کا کیمپین رہا ہے نارملائزیشن کا, ایک اوور آل جو کیمپین تھا یعنی ایکسپینسنزم کا, اس میں بیسیکلی حزب اللہ, ایران, عراق اور سیریا یہ کانٹا بنے ہوئے تھے. तो इनकी ये कोशिश थी कि इस कांटे यानी चार कांटे जो है इनको हटाया जाए। ईरान में इन्होंने कोशिश की 2009 के इलेक्शन के बाद, जिस इलेक्शन में मैं भी वहां पे था, और इनकी कोशिश जो है कामयाब नहीं हुई। इराक में और सीरिया में ऑफकोर्स ये कोशिश जो है वो बड़ी उससे की गई, लेकिन वहाँ भी अब ये कामयाब नहीं हुई है, और ये हिजबुल्ला के खिलाफ भी कामयाब नहीं रहे हैं। तो एक पूरी की पूरी इस नैरेटिव की शिकस्त जो है वो हमने देखी है, और मुझे उम्मीद है कि इनको और भी सेटबैक्स जो है रीजन में लगने वाले हैं।
पैगंबर इस्लाम के परिजनों के प्रेमियों और तकफीरियत की समस्या की समीक्षा के सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रख्यात सुन्नी धर्मगुरु मुफ्ती गुलजार नईमी सम्मेलन के लक्ष्यों और विषयों के बारे में कहते हैं,
बुनियादी तौर पर तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो जो मुहिब्बान अहले बैत हैं पूरी इस्लामी दुनिया में और इस्लामी ममालिक में, उनको इकट्ठा करके एक वहदत का पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम देना था, और दूसरा इसका मकसद जो है वो तकफीरियत के खिलाफ जो आलम इस्लाम में मुहिब्बान अहले बैत को कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं उनके हवाले से उनको जो है वो इन्फॉर्म करना मकसूद था। तो अपने नताइज के एतबार से ये बहुत ही अहम और बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अपने नताइज के एतबार से ये बहुत आला कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसमें जो कंटेंट्स थे वो बहुत ही अहम थे, और उलमा ने बहुत ही शानदार गुफ्तगू हुई है।
पाकिस्तान के प्रख्यात मुस्लिम विद्वान साकिब अकबर इस सम्मेलन और इसके वातावरण के बारे में बताते हुए कहते हैं,
तकफीरियत का पूरे का पूरा सारा जोर और उनका जो प्रोपेगेंडा और जो उनके नजरियात और अफकार जो हैं वो अहलुल बैत के खिलाफ रहे हैं, अहलुल बैत के मानने वालों के खिलाफ रहे हैं, उनका कत्लेआम उन्होंने किया है, उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, उसमें इस नुक्ते को बहुत ज़्यादा सबने हाईलाइट किया है, यहाँ तक कि फ़लस्तीन से आने वाले लोगों ने, बाकी इलाकों से आने वाले जो नुमाइंदगान ने, सब ने इस मसले पर इशारा भी किया है, बाद में सराहत से बात की है कि हम तकफीरियत के खिलाफ जो है वो सारे के सारे एक हैं अहल बैत के मानने वाले। तो एक खासी ऐसी फ़ज़ा बनी हुई है, एक मैं समझता हूँ कि इस मौके पर वाकई हमें दुनिया भर के अहल बैत के मानने वाले जिसमें सुन्नी शिया सारे शरीक, उनको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि अहल बैत के दुश्मन और मुसलमानों के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन, उनको इतनी बड़ी शिकस्त जो है वो अपने अंजाम को वो पहुंचे हैं।
बहरहाल सीरिया व इराक से दाइश का सफाया हो चुका है, और इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के शब्दों में, ईश्वर के नेक बंदों ने दाइश को पराजित करके अमेरिका को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। अब समय है कि क्षेत्रीय देश विशेषकर इस्लामी जगत तकफीरियत, चरमपंथ और धर्मांधता फैलाने वाले केंद्रों पर अंकुश लगाएं, ताकि इस प्रकार के विचारों को परंपरा से पहले ही रोक दिया जाए। इसी तरह दुनिया को भी चाहिए कि वो आतंकवाद से सही अर्थ में संघर्ष करने वालों और केवल इसका दावा करने वालों को पहचाने, और आतंकवाद से लड़ने वालों का भरपूर साथ दे।